कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जन बल्ल गिरिवर धारी
गोपी जन बल्ल गिरिवर धारी
जय गोपी जन बल्ल गिरिवर धारी
जय गोपी जन बल्ल
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर
वनचारी
तीर वनचारी
तीर
जय राधा माधव कुंज जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतहस्तिवाहन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री नितय गौर हरि की जय श्री गोकुल धाम की जय नितय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। श्लोक करना है कि आज ईश्वरपुरी का तिरुभाव दिवस है ना, वो करना है। ईश्वरपुरी प्रसाद लिया अंजनानंदन ब्रजेश कृष्ण इतला प्रसाद फोर्ट बरला हरे राम फोर्ट बरला और कौन वल्लभ निमाय प्रसाद लिया हाँ पेट भर गया उद्धव हरे हम तो खान तो मतलब खाओ नहीं हाँ। खा लिया क्या खाई क्या बोलते हैं खाई लो की बंगला है लगभग हरे कृष्णा ज्ञानेश्वर प्रसाद घेतला हरि बोल चला क्या सुगंध है ये फूल का हा? दसरा गोपाल का ये टाटले नहीं ये पृथ्वी का गंध है। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं गंध के बारे में भगवद गीता में
पुण्यगंध
पृथ्व्याम च मतलब क्या
पृथ्वी का
गंध मैं हूँ तो गंध का संबंध पृथ्वी से होता है। तो जब हम ऐसा कोई सुगंध लेते जैसे बरसात अचानक हो जाता है ना बहुत दिनों के बाद किस तरह का गंध आता है मिट्टी का गंध आता है ना तो पृथ्वी का संबंध गंध से है। जब सृष्टि का सृजन होता है उस प्रक्रिया में हम देखते हैं ना, अंत में पृथ्वी गंध से, पर गंध को आने तक पहले शब्द से शुरू होके सब धीरे 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 आकाश वगैरह सब से होके यहाँ पर आता है। तो गंध का संबंध पृथ्वी से है, तो जब भी हम कोई सुगंध लेते हैं वो पृथ्वी से ही आने वाला है, तो ये भी पृथ्वी से ही आता है। पृथ्वी के बिना फूल आ सकता है क्या?
नहीं।
हम बोलेंगे बीज से आएगा, लेकिन बीज ऐसे रहेगा तो कुछ होगा क्या? बीज जब जमीन में जाएगा, मिट्टी में, फिर वो इसमें आ जाता है। तो ये जो सुगंध है, वाह, ऐसा कभी इसको भी इंद्र तृप्ति बोलते हैं गंध के इसको तृप्त करना। तो सारा जीवन इसी में बीत सकता है इसलिए भगवान की सेवा में फूलों का इतना महत्व है। भगवान भक्ति की कल्पना क्या आप फूलों के बिना कर सकते हैं? भगवान की भक्ति में फूल नहीं हो तो चलेगा क्या? एक दृष्टि से कोई रेगिस्तान में रहता है वो भी भक्ति कर, ठीक है, उसके पास क्या फूल होगा रेगिस्तान में, ठीक है, परंतु जहाँ जमीन है, मिट्टी है, वहाँ भगवान के लिए फूल ना हो तो भक्ति नहीं हो सकती। पूजा में हो, अर्चना में हो, श्रृंगार में हो, हर चीज में फूलों का होना जरूरी है, बहुत आवश्यक है। एक बार हमने, याद है, बहुत साल पहले बेलगाम मंदिर में रविवार को हमने एक या दो प्रवचन केवल फूलों के ऊपर दिया था, बहुत साल पहले। फूल, कृष्ण भावनामृत में फूल, फूलों का महत्व, इसके ऊपर एक या दो प्रवचन दिए थे। अभी मुझे भी याद नहीं, बहुत साल हो गए। हरि भक्ति विलास में भी कितना लंबा वर्णन सनातन गोस्वामी ने किया है फूलों के बारे में, कौन से फूलों को अर्पण करना चाहिए, कौन से नहीं किए जा सकते। और भक्ति सामृत सिंधु में भी रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि केवल उन फूलों को अर्पण करना चाहिए जिनका सुगंध है। वैसे बाध्य होकर हम ऐसे भी फूलों को अर्पण करते हैं जिनका सुगंध नहीं है, थोड़ा कुछ हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छी तरह से सुगंधित फूलों को उगाएं। ये हमारे भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है और भगवान को अर्पण करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे फूलों को उगाने से। इसलिए यहाँ पर गोकुल धाम में एक और एक सूत्र आपको बताता हूँ। कई सूत्र है ना गोकुल धाम के लिए, एक सूत्र ये है, फूल ही फूल गोकुल धाम में, फूल ही फूल होने चाहिए, फूल ही फूल नहीं मूर्ख ही मूर्ख नहीं, फूल ही फूल। इसलिए जितना हो सके फूल तैयार करने चाहिए। जो भी हमारी सेवा, हमारे एक सुझाव है, आप देखो ये होता है कि हो सकता है कि नहीं। आप में से हर एक भक्त, जो भी आपकी सेवा हो, आप रसोई में, किचन में कर रहे हैं, आप ऑल्टर में सेवा कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, बैलों की सेवा कर रहे हैं, या आप कुछ भी सेवा कर रहे हो, आप में से हर एक कम से कम एक तो कुछ फूल के उत्पादन के लिए अपना करो। एक छोटा पौधा क्यों ना हो, आप संभालो। एक एक पेड़ तो नहीं, पेड़ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर भी पेड़ के लिए भी कोई बात नहीं, कर सकते हैं। केवल पानी डालना, उसका देखभाल करना, उसके लिए दिन में कितना समय लगता है, 5 मिनट, 10 मिनट, वो भी नहीं। हर एक जहां अपने जगह में कर लो, जहां करना है करो। और थोड़े भक्तों की तो मुख्य सेवा है फूलों की सेवा करना, रसराज गोपाल प्रभु है ना, फूलों का और कौन देखता है, फूलों का कौन ज्यादा कर रहा है, और अंजना नंदन प्रभु, ठीक है। तो दो तीन भक्त जिनका खास सेवा है वो तो करते ही रहेंगे फूलों की सेवा, लेकिन बाकी भक्तों को भी एक एक पौधा एक एक कुछ ना कुछ करना चाहिए। मंजूर है? कबूल
कबूल
कबूल कबूल, सबको कबूल है? कोई ये नहीं बोलेंगे मेरा सेवा नहीं है, मेरा सेवा ये है, मेरा सेवा वो है, नहीं। अपनी जगह ढूंढो जहां आपको ये पौधा उगाना है। बहुत बड़े जमीन, कितना जमीन पड़ा है, यहां भी उगा लो। और आपका कर्तव्य है कि आपको, लेकिन इसमें थोड़ा शर्त भी है, ऐसा नहीं कि ऐसा फूल ऐसा उगा दो जो केवल महीने में तीन महीना आएगा साल में, बाकी नौ महीने हमारे इसमें फूल नहीं आता है ना अभी, ऐसा नहीं। आपको देखना है कि प्राय प्रतिदिन फूल आएगा, आपको भगवान के लिए अर्पण करने के लिए फूल मिलेगा। इसलिए आप ऐसा कुछ पौधों को रखो अपने जगह में, इसमें कभी न कभी एक ना एक पौधे में से फूल तो निकलेगा कुछ ना कुछ। गुलाब, गुलाब कितने महीने आता है? हाँ, हमेशा आता है, 12 महीने।
बारिश में,
बारिश में ज़्यादा बारिश होता कम होता है, बारिश कम होने के बाद रेगुलर होता है।
तो बारिश के महीने में कौन सा फल फूल आएगा?
स्पाइडर लिली।
स्पाइडर लिली बारिश में भी देखो फूल को थोड़ा थोड़ा ऐसे रखे, डायरेक्ट बारिश ना गिरे, वो भी देख लो। हाँ, तो आपका हर एक भक्त को चाहिए कि भगवान के लिए प्रतिदिन आपको एक फूल निकालना, चीटिंग नहीं करना, दूसरे के फूल में जाके निकाल के देना होगा अभी हमने किया।
हाँ, लगाना है पौधे भी देने,
पानी भी देने,
पानी भी चल
रहा। वो चंडीदास की कथा पता है ना आपको? चंडीदास बहुत बड़े भक्त थे, विद्यापति, चंडीदास, कृष्णा, या हमारे बिल्व मंगल ठाकुर, ये सब बहुत बड़े बड़े वैष्णव कवि हुए। चैतन्य महाप्रभु इनकी कविताओं को, इनकी पंक्तियों को रोज प्रतिदिन सुनते थे। अपने जगन्नाथपुरी में जब वो थे शाम के समय, रात के समय, तो नाम उनका चंडीदास है, चंडी मतलब काली, परंतु वैसे वो थे भक्त, नाम चंडी चंडीदास, परंतु तो उनके बारे में क्या कथा बता है?
बहुत साल पहले सुना था। हाँ, वो अपने भाई के पड़ोसी के फूल फूल लेकर एक बार उन्होंने भगवान को चढ़ाया था, अर्पण किया था। ये कंफ्यूजन है,
जितना याद है उतना बोल।
तो वो पहले काली के भक्त थे और उन्होंने शायद उनके पड़ोसी में जो थे वो वैष्णव थे और उन्होंने सब भगवान के लिए फूल उगाए थे, उसमें से उन्होंने चोरी करके काली को फूल अर्पण किए थे। तो काली देवी अगले दिन उनके सपने में आके बता, वो बहुत प्रसन्न हो जाती है कि आपने मेरे प्रभु के प्रसाद को मुझे अर्पण किया, तो मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो फिर उनको लगता है कि उनके भी प्रभु हैं, तो फिर मुझे उनके प्रभु की ही भक्ति करनी चाहिए, काली देवी की क्यों करूँ। फिर वो वैष्णव बन जाते।
बहुत अच्छा, चंडीदास केवल फूल अर्पण करके, उनके फूल अर्पण हुए उनको तो भक्त बन गए। जयदेव गोस्वामी, जहाँ मायापुर के पास एक स्थान है चंपाहट्टी, जहाँ जयदेव गोस्वामी भी रहा करते थे, चंपा, सुवर्ण चंपा, मैंने दिया ना किसी को, सुवर्ण चंपा है, इसको सुवर्ण चंपा बोलते हैं। चंपा तो साफा मराठी में बोलते हैं, साफा, ये सुवर्ण चंपा, ये चंपाहाटी में, चंपाहाटी का नाम इसलिए लगा कि ये फूल वहाँ भरपूर होता है, इसका भी ऐसा सुगंध, वाह भगवान के लिए है ये, भगवान के लिए पृथ्वी का गंध जो है, इसका पृथ्वी की परिपूर्णता है, ऐसा गंध निकलता है इसमें से। तो आप में से हर एक भक्त अपना एक छोटा सा बनाइए, दो चार फुट का चलेगा जितना भी है, अपना अपना इलाका चुन के रख लीजिए और रोज आपको उसमें पानी डाल के फूल लाना है। कबूल है? कबूल कबूल हाँ कबूल, सबको कबूल। सूरज
कबूल
अधेरस वैभव समस्त वैष्णव उद्धवरी मुरली माता तैयार, वल्लभ निमाय तैयार, सोनार गौरी राजेश्वर। तो अभी ये एक एक फूल सब जगह ले जाओ, सूंघो उसको, देखो चमत्कार, सूंघ के सबको बांटो। और ये कोई बच्ची ने बना के दिया, देखो सिंपल बात है, कितना लकड़ी है, क्या है ये लकड़ी है, इसको ऊपर ऐसे बना के दिया, ये कहाँ रखना है, रखो इसको, कहाँ टांगोगे इसको, इधर ही कहीं मंदिर में टांग दो है ना।
इसमें फूल है,
ये फूल है, फूल के बिना कुछ होता ही नहीं। हरे कृष्णा, तो माधव चैतन्य प्रभु को भी करना चाहिए ऐसे, हाँ हाँ बोल दो बस सब लोग ने हाँ बोल दिया बने खुद कड़े दो फूलों को सुनना है आपको, गुलाब और सुवर्ण चंपा, ऐसा है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि एक चित्रकार जो एक गुलाब का फूल करता है, चित्र बनाता है, उसको लाखों रुपए मिलते हैं चित्र को बेच के, लेकिन जो असली चित्रकार है जिसने असली फूल बनाया उसको कोई कीमत नहीं देता है ना, विडंबना। नकली चीज को बहुत कीमत, असली चीज बनाने वाले को कोई कीमत नहीं। कैसा है सुगंध, क्या नाम आपका?
संदीप।
फूल सुनो कैसा है, पृथ्वी का गंध सब जगह पर सबको। तो ऐसा हम भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान भक्ति भाव से अर्पण करेंगे भगवान को, भगवान कितने प्रसन्न होंगे, बराबर वही कि नहीं। इसलिए कौन सा सूत्र है हमारे लिए गोकुल धाम में, अनेक सूत्र हैं, उनमें से कौन सा है, फूल ही फूल, सब जगह फूल दिखने चाहिए है कि नहीं, बराबर। कैसा प्रस्ताव है, कैसा प्रस्ताव है, फूल ही फूल का अच्छा प्रस्ताव है, बढ़िया। चलो उद्धव हरि प्रभु का सर्टिफिकेट मिल गया, ठक टप्पा मिल गया। बस ऐसे करते रहो रसराज गोपाल प्रभु, खूब फूल उगाओ, भरपूर मतलब भरपूर, ठीक है ना, कंजूस नहीं बनने का बस थोड़ा फूल कर लो, भरपूर करो सबको, सबको अपना अपना ये करना चाहिए, ये भूलना नहीं, लेकिन अभी एक हफ्ते के बाद अभी हाँ हाँ बोल के उत्साह, फिर एक हफ्ते के बाद एक महीने के बाद कम नहीं होना चाहिए, आए तो ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं जब भी आऊँगा इधर, आप सब अपना अपना 2 फुट 4 फुट का बगीचा हमको दिखाना, सबको दिखाना है मुझे, कौन सा फूल लगा रहे हो, कैसा, अपना अपना जगह चुन लो। कहाँ कहाँ पे करेंगे सर?
गार्डन में सामने
चिटिंग नहीं करना लेकिन, ठीक है, तो निर्धारित जगह करोगे, ठीक है, और किसी को अपने जगह में भी करना है कर सकते हैं। मैं आके देखूंगा सबका, उधर भी करो अंदर,
किया
ना
वही दिखाएंगे
फूल खुद कर रहा है तो उसमें क्या खुद कर रहे हैं तो जहाँ भी करो कोई बात नहीं, लेकिन खुद करो, जैसे अपना जब कोई दूसरा नहीं कर सकता ना। जैसे कभी कभी ऐसे एक व्यक्ति था, मुझे याद है, हमने उसको बोला जप करो, अरे पत्नी करती है ना, अरे पत्नी करती है तो क्या, पत्नी भी भोजन लेती है, तुम भोजन लेते हो क्या, तुम ऐसे बोलो फिर, पत्नी पत्नी भोजन लेती है तो मैं क्यों लूँ भोजन, ऐसे बोलते हो, ठीक उसी तरह से पत्नी भजन करती है तो तुमको भी भजन करना है। ऐसा नहीं कि पत्नी करती है तो हम क्यों करेंगे, तो उसी तरह से फूल अपना सेवा भगवान के लिए होना चाहिए। निजी होना चाहिए भगवान के लिए, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे संक्षेप में श्रीला ईश्वरपुरी के बारे में। ईश्वरपुरी का नाम तो हम सब ने सुना है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। ये पुरी मतलब क्या, पुरी क्या होता है, पुरी क्यों,
पदवी, सन्यास पदवी,
सन्यास
पदवी,
सन्यास पदवी है, ऐसे और कितने पदवी हैं, कोई उदाहरण,
सरस्वती,
सरस्वती,
भारती,
भारती,
सागर,
सागर,
गिरी,
आश्रम, तीर्थ, गोस्वामी, स्वामी,
अरण्य,
ये सब सन्यास पदवी है। ऐसे 1000 है जो विष्णु स्वामी ने किया था, निर्धारित ऐसे शास्त्रों से निकल के किया था, उसमें से शंकराचार्य ने 108 चुने, उसमें से 10 प्रधान माने जाते हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी ऐसे किया, जब संन्यास शुरू किया ना, पूरी आश्रम तीर्थ सरस्वती ये सारे श्रेष्ठ माने जाते हैं पद, और अन्य जो पद हैं वो इतने श्रेष्ठ नहीं माने जाते। तो खैर उनमें से ये पूरी एक है, श्रेष्ठ वालों में से पूरी, ईश्वरपुरी। और कोई सन्यासी हैं जिनका नाम पुरी है? गौरलीला माधवेंद्र पुरी और रामचंद्र पुरी, परमानंद पुरी और श्रीरंगपुरी, पंडरपुर में जो है। तो ऐसे बहुत सारे पुरी, तो ये ईश्वरपुरी। तो ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। अब भगवान के जो निकट रहते हैं, उनके साथ जो लीला करते हैं, वो तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते ना, वो तो विशेष व्यक्ति ही होंगे। दूर से भी यदि किसी ने भगवान के लीला का दर्शन किया, वो कितना भाग्यशाली है। तो वो निकट से जो भगवान की सेवा करता है, तो वो कितना महान होगा। और केवल निकट से ही नहीं, जो भगवान से श्रेष्ठ है ऐसे लीला कर रहा है, भगवान के माता पिता, भगवान के गुरु, ऐसे श्रेष्ठ पद में जो सेवा करते हैं, वो और कितने महान होंगे। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करिमानी श्रेय जाय ब्रजेंद्र रपाश। इसका मतलब क्या है?
महाप्रभु के पार्षद जो है, जो नित्य सिद्ध है ऐसे कोई समझता है, वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है।
बहुत अच्छा। नित्य सिद्ध करिमानी, जो मानता है कि ये गौरांगी के संगी गण जो है, ये नित्य सिद्ध हैं, भगवान के धाम में रहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से सोचता है, वो भी व्रजेंद्र श्री कृष्ण के पास जाएगा। तो इन पार्षदों को कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। तो महाप्रभु या भगवान जब प्रकट होते हैं, तो अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं, अकेले नहीं आते कभी भगवान। तो भगवान के लीला में कई उनके पार्षद होते हैं, थोड़े उनसे निम्न स्तर के होते हैं, थोड़े उनके बराबर के स्तर के होते हैं, थोड़े उनसे वरिष्ठ होते हैं लीला में। तो जो वरिष्ठ होते हैं, आयु में बड़े होते हैं, वो पहले जन्म लेते हैं, पहले प्रकट होते हैं। ऐसे पार्षदों का कोई उदाहरण आप दे सकते हैं? अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर, जगन्नाथ मिश्र, शची माता, विश्वरूप, नित्यानंद प्रभु, माधवेंद्र पुरी, उसी तरह से ईश्वरपुरी। तो पहले प्रकट हुए, उनका जन्म स्थान का नाम किसी को पता है?
कुमारहट्ट।
वो ऐसे ये स्थान है, मैं गया था वहाँ पे, मुझे याद है। कुमारहट्ट आप में से कोई गए हैं मायापुर? जो गए जब भी, हाँ वहाँ से मिट्टी लेते हैं थोड़ा थोड़ा। क्यों? क्योंकि ये ईश्वरपुरी का जन्म स्थान है। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर गए थे, तो उन्होंने देखा कि ये मेरे गुरुदेव का जन्म स्थान है, तो यहाँ की मिट्टी मुझे लेनी चाहिए, पावन स्थान है। तो उन्होंने वो स्थान से थोड़ी मिट्टी ली, बस थोड़ा सा लिया। लेकिन अन्य भक्तों ने देखा, तो उसके बाद ये प्रथा बन गई। तो सब लोग वहाँ जाके उसी स्थान से थोड़ा थोड़ा मिट्टी लेके चले गए। तो ऐसा मिट्टी निकालते 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 पूरा तालाब जैसा बन गया उधर, और उसमें फिर पानी भर गया। तो एक तालाब है वो अभी, बहुत बड़ा खड्डा बन गया, करते करते निकालते निकालते निकालते। तो उसको चैतन्य डोबा बोलते हैं, डोबा मतलब एक तालाब। तो वहाँ पे आज भी है चैतन्य डोबा, लेकिन बहुत छोटा है शायद अभी। तो कुमारहट्ट उनके जन्म स्थान का नाम है ईश्वरपुरी का। जब चैतन्य महाप्रभु का तिरुभाव हुआ तो उस समय श्रीवास ठाकुर आदि जो भक्त थे वो श्रीवास ठाकुर विशेष करके उनको इतना विरह हुआ कि वो नवद्वीप छोड़ के कुमारहट्ट चले गए, क्योंकि उनको नवद्वीप में महाप्रभु की याद तो बहुत ज़्यादा आती थी, महाप्रभु के लीला स्थली वगैरह वहाँ पर थे, तो वो अपने परिवार को लेकर कुमारहट्ट चले गए। तो ईश्वरपुरी ये माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। माधवेंद्रपुरी के दो प्रमुख शिष्य थे अद्वैत आचार्य और ईश्वरपुरी। और भी कई शिष्य थे माधवेंद्रपुरी के, उनमें से कोई नाम बता सकते हैं? माधवेंद्रपुरी के शिष्य कौन कौन थे? दो नाम तो बताया हमने, अद्वैत आचार्य और ईश्वरपुरी, और
रामचंद्रपुरी।
कौन से नाम बताया? नित्यानंद प्रभु और
रामचंद्रपुरी।
रामचंद्रपुरी, लेकिन उनका नाम उतना है नहीं, हरिदास ठाकुर नहीं, और परमानंदपुरी नहीं,
श्रीरंगपुरी,
श्रीरंगपुरी पंडरपुर में, सनोड़िया ब्राह्मण। हाँ, बहुत अच्छा, पुंडरीक विद्यानिधि भी, पुंडरीक विद्यानिधि जो बहुत अमीर थे, धनी व्यक्ति थे, लेकिन परम वैष्णव थे। तो ये सब इनके शिष्य, उनमें से दो प्रमुख हैं अद्वैत आचार्य और ईश्वरपुरी। तो ऐसे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ये कृष्ण प्रेम के वृक्ष बन के आए। तो भक्ति कल्पतरु, कल्पतरु क्या होता है? तरु मतलब क्या? पेड़। तो कल्पतरु मतलब वो पेड़ जो सारी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। तो भक्ति कल्प वृक्ष, तो चैतन्य महाप्रभु ये भक्ति के पेड़ बने, और ये पेड़ जो है ये इसके अंकुर थे। कौन थे अंकुर? माधवेंद्रपुरी। भक्ति कल्प तरुर प्रथम अंकुर, तो ये भक्ति कल्प तरु या कृष्ण प्रेम के पेड़ के ये पहले अंकुर थे माधवेंद्रपुरी। ईश्वरपुरी रूपे पुष्ट होइलो अंकुरा, तो ये जो अंकुर है ये पुष्ट हुआ ईश्वरपुरी के रूप में, और फिर पेड़ बना चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और फिर वही पेड़ों का के दो मुख्य शाखाएं हुई, एक अद्वैत आचार्य एक नित्यानंद प्रभु। ऐसे तो माधवेंद्रपुरी और ईश्वरपुरी का स्थान कैसा था इसे हम समझ सकते हैं। तो ईश्वरपुरी बहुत महत्वपूर्ण भक्त है। वैसे माधवेंद्रपुरी कौन, किनके शिष्य थे, कोई बता सकते हैं? लक्ष्मीपति तीर्थ। और लक्ष्मीपति तीर्थ कौन से संप्रदाय में थे? मध्व संप्रदाय। माधव वो अलग शब्द है, ये मध्व संप्रदाय के सन्यासी थे लक्ष्मीपति तीर्थ। तो माधवेंद्रपुरी से वास्तव में गौड़ी संप्रदाय शुरू होती है, और गौड़ी संप्रदाय का संबंध मध्व संप्रदाय से उनसे होती है। मध्व संप्रदाय चले आए ऐसे ऐसे ऐसे, फिर लक्ष्मीपति तीर्थ से माधवेंद्रपुरी आए, तो यहाँ से गौड़ी संप्रदाय शुरू हो गया, एक शाखा निकली। तो माधवेंद्रपुरी और मधु संप्रदाय में अंतर क्या था, कोई बता सकते हैं?
गौड़ीय वैष्णव जो है वो वृंदावन की लीला में ज्यादा रुचि रखते हैं।
मतलब और विशेष रूप से
जो गोपी
जो विरह भाव है और जो एक दिव्य आनंद का भाव है, जो स्वाभाविक एक भक्ति का भाव, वो जो अन्य वैकुंठ के भाव में नहीं होता है, वो माधवेंद्रपुरी ने दर्शाया, जो कि पहले कभी मध्व संप्रदाय में दिखाई नहीं पड़ा था। तो इसलिए जो उनका व्रज भाव था, वृंदावन का भाव, वो प्रकट किया माधवेंद्रपुरी ने, और आगे चल के इसी भाव को अंगीकार किया उनके शिष्य परंपरा में। अच्छा, वृंदावन को व्रज क्यों कहते हैं? व्रज भूमि कहते हैं ना, व्रज
बहुत सारा तुलसी,
वो वृंदा वृंदावन चरती है तो। लेकिन व्रज शब्द से क्या अर्थ?
चलना
व्रजति, भगवत गीता में व्रजति शब्द बोल सकते किम व्रजे, व्रजेत किम, वो कैसे चलता है? कौन सा श्लोक? स्थित प्रज्ञस्य आभाषा। तो व्रजे किम किम व्रजेत के, वो कैसे चलता है? तो व्रज मतलब चलना या घूमना। तो क्योंकि यहाँ पे वृंदावन में गाय बहुत घूमती हैं, चरती हैं, उनका चरण होता है, इसीलिए क्या वो, इसीलिए ये व्रज कहलाती है, ये जमीन भूमि, व्रज भूमि नाम आया। तो खैर, ये व्रज भूमि का जो भाव है ये बहुत विशेष है। इतनी तीव्रता से भगवान के हृदय के प्रति प्रेम होना और आनंद के लक्षण प्रकट होना और विरह भाव में होना, ये सब चीजें माधवेंद्रपुरी ने प्रकट की। इसके पहले मध्व संप्रदाय में नहीं रखा गया, और इसी भाव को ईश्वरपुरी ने अंगीकार किया, स्वीकार किया, और आगे चल के चैतन्य महाप्रभु। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु मूल है, लेकिन वो भी एक दुनिया को उदाहरण देते हैं कि कैसे हमको भी परंपरा से जुड़ना चाहिए, अन्यथा मूल गौड़ी संप्रदाय के प्रारंभ को प्रारंभ करने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु। परंतु ऐतिहासिक रूप से देखा जाए, परंपरा के रूप से देखा जाए, तो माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी जब अपने अंतिम दिनों में थे प्रकट लीला के, बहुत वृद्ध हो गए थे और अपनी शैया में लेटे हुए थे, उठ भी नहीं सकते थे, सब कुछ वहीं पे होता था। तो ईश्वरपुरी ने उनकी सेवा की, मलमूत्र साफ करना, उनको पिला, सब कुछ करना, उनके साथ में बैठ के कृष्ण कथा उनको सुनाना, कृष्ण नाम सुनाना। तो माधवेंद्रपुरी बहुत प्रसन्न हुए ईश्वरपुरी के ऊपर, और उनको उन्होंने वरदान दिया कि तुम एक कृष्ण प्रेम के सागर बनो, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं मिल सकता। ये चिरंजीवी भव है ना, धनवान भव, ये सब आशीर्वाद कैसा है? ये सब व्यर्थ के आशीर्वाद है, शाप है ये। असली आशीर्वाद क्या है? कृष्णे मतिरस्ति अस्तु, जो चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया सब, जो किसी को मिलते थे, कृष्णे मतिरस्तु, कृष्ण मति, कृष्ण भावना तुम्हारे अंदर जागृत हो, ये असली आशीर्वाद है। तो ऐसा आशीर्वाद माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी को दिया, और ईश्वरपुरी वास्तव में माधवेंद्रपुरी की कृपा से कृष्ण प्रेम के सागर बन गए। वैसे भी वो शुद्ध भक्त थे, लेकिन माधवेंद्रपुरी जैसे शुद्ध भक्त के आशीर्वाद को प्राप्त करके बस और भी विशाल सागर बन गए। तो माधवेंद्रपुरी जब अपने अंतिम दिनों में थे, तो वो एक श्लोक बार बार बोला करते थे, कई श्लोक, लेकिन उनमें से एक श्लोक बहुत बार बार बोलते थे, जिसमें वो अपने कृष्ण प्रेम को व्यक्त करते थे, भगवान कृष्ण से विरह की भावना को व्यक्त करते थे। वो श्लोक कोई जानते हैं? किम करोमि अहम्। बहुत अच्छा। तो इस श्लोक का अर्थ,
ये दीन दयाद्र नाथ, दीन दयाद्रों के नाथ मथुरा नाथ, मैं आपको कब देख सकता हूँ?
कदा अवलोक्य से। कदा मतलब कब, अवलोक्य से मतलब मैं देख सकता हूँ। तो हे दीन दयाद्रों के नाथ, हे मथुरा के नाथ, मैं आपको कब देख पाऊंगा? कदा अवलोक्य से, मथुरा नाथ कदा अवलोक्य से। फिर विचलित हो रहा है, कातरम, हृदयम कातरम, मेरा हृदय बहुत विचलित हो रहा है। क्यों? त्वद अलोक्य, आपको न देख के, आपका दर्शन न होने के कारण मेरा हृदय बहुत विचलित हो उठा है। फिर
हृदय भ्रमित हो रहा है, और इसलिए मैं क्या करूं?
दैत भ्राम्यति, दैत मतलब है मेरे प्रिय, भ्राम्यति इसलिए मैं भ्रम में पड़ गया हूँ। मैं अभी मैं क्या करूं, दुख से भर गया मेरा जीवन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं समझ पा रहा हूँ? किम करोमि अहम्, किम करोमि अहम्, कि अब मैं क्या करूँ। तो ऐसे वो बोल रहे थे। जो कृष्ण भक्त जैसे ईश्वरपुरी थे, वो समझ रहे थे कि इनका भाव क्या है और कितने ऊंचे स्तर पे ये पहुँचे हैं भक्ति के, कि ऐसे विरह का भाव, व्रज भाव में वो बोल रहे हैं। परंतु उनके और एक शिष्य थे रामचंद्रपुरी, वो थोड़े बहुत शिष्य तो बन गए इनके, लेकिन इनके भाव को, इनके शिक्षणों को समझ नहीं पाए, ग्रहण नहीं कर पाए। तो मूल रूप से वो थोड़े मायावाद दर्शन का थोड़ा मिश्रण उनके इसमें था। तो उन्होंने उनको उपदेश दिया। इसके बारे में विस्तार में माधवेंद्रपुरी की चर्चा जब होगी उस समय वर्णन करना ठीक रहेगा। परंतु संक्षेप में माधवेंद्रपुरी को क्या बोला रामचंद्रपुरी ने? कि आप सन्यासी है, आपको निराकार ब्रह्म के ऊपर कल्पना या चिंतन करना चाहिए। हाँ, ये आप शोक करते बैठे हो कि हाय 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 क्या होगा, क्या होगा मेरा, क्या होगा, मैं क्या करूँ क्या करूँ। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा जो है, वो व्यक्ति को ब्रह्म स्तर पे जो होते हैं उनको प्रसन्न होना चाहिए। आप ऐसे शोक करते बैठे हो, दुखद अवस्था में हो, जरा ब्रह्म का चिंतन करो आप, ऐसे शोक नहीं करना। तो रामचंद्रपुरी ये नहीं समझ पाए कि ये सबसे सर्वोच्च कोटि का जो दुख होता है, ये वास्तव में सबसे ऊंचा सुख होता है। दुख और सुख की परिभाषा क्या है, इसकी समझ क्या है, ना तो भौतिकतावादी लोग जानते हैं और ना मायावादी लोग जानते हैं। मायावादी लोग आध्यात्मिक पथ में होने के कारण भी नहीं जानते हैं, हाँ, क्योंकि सुख शब्द की परिभाषा क्या है नहीं जानते हैं। तो इस तरह से रामचंद्रपुरी ने टोका, ऐसे साहस की, दुस्साहस की रामचंद्रपुरी ने, कि ऐसा उपदेश दिया। और फिर माधवेंद्रपुरी ने खूब डांटा उनको। कैसे डांटा, क्या डांटा, वो माधवेंद्रपुरी की कथा जब होगी, थोड़े दिनों में अभी होगी, उनका आविर्भाव दिवस है तो गौर पूर्णिमा के थोड़े दिन पहले उस समय चर्चा होगी। तो रामचंद्रपुरी ने ऐसे भर्सना जब के पात्र हुए अपने गुरु के, आगे चल के उनके अंदर भक्ति का जो रस है वो निकल गया और वो केवल निंदा करने बैठने लगे। निंदा रस, निंदा का कड़वा रस, का स्वाद लेते रहे। चैतन्य महाप्रभु में भी दोष देखने लगे, सारे वैष्णवों में दोष देखने लगे। दूसरी ओर ईश्वरपुरी के हृदय में भक्ति का समुद्र का विस्तार होने लगा और ज्यादा 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 ज्यादा। तो ईश्वरपुरी और चैतन्य महाप्रभु का मिलन या सबसे पहले कब हुआ, किसी को पता है? मायापुर में कब
जब ईश्वरपुरी वहाँ पर आए थे कुछ समय के लिए निवास करते तो उनको सड़क पे ही मिले, फिर उनको घर पे लेके गए।
हाँ, सड़क पे मिले ऐसे नहीं, वो ईश्वरपुरी आए थे जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रहा करते थे। उस समय वो कौन से नाम से जाने जाते थे? निमाय पंडित। और वो एक व्याकरण आदि के क्या कहते हैं विद्वान थे वो, है तो न्याय व्याकरण आदि वो सब सिखाते थे और उसमें बड़े विद्वान थे। तो उस समय हुआ ये कि ईश्वरपुरी भ्रमण करते करते आए और वो गोपीनाथ आचार्य के घर में रुके। गोपीनाथ आचार्य कौन है पता है?
सार्वभौम भट्टाचार्य के ब्रदर इन लॉ।
हाँ, सार्वभौम भट्टाचार्य के रिश्तेदार थे। जब महाप्रभु पहली बार वहाँ पर गए जगन्नाथपुरी और सार्वभौम भट्टाचार्य ने थोड़ा दोष देखा महाप्रभु ने, तो गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को डांटा, आप नहीं जानते हो कि ये स्वयं भगवान है। तो गोपीनाथ आचार्य के घर में ईश्वरपुरी 7 महीनों तक रुके। तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि ईश्वरपुरी वहाँ पर भक्तों से मिलते थे और उस समय उन्होंने देखा कि एक बहुत ही वैरागी भाव का एक लड़का है, गदाधर पंडित, बहुत सौम्य स्वभाव का है। तो ईश्वरपुरी के मन में गदाधर पंडित के प्रति बहुत स्नेह उत्पन्न हुआ। तो प्रतिदिन वो गदाधर पंडित को एक प्रवचन दिया करते थे और अन्य भक्त भी आते थे, क्योंकि उस समय ईश्वरपुरी ने अपने ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम क्या था?
कृष्ण
लीलामृत, कृष्ण लीलामृत ग्रंथ का नाम था। बिल्व मंगल ठाकुर के ग्रंथ का नाम क्या था? कृष्ण करणामृत। और ईश्वरपुरी के ग्रंथ का नाम था कृष्ण लीलामृत। तो इसको पढ़ा सिखाते थे गदाधर पंडित को। तो उस समय निमय पंडित भी वहाँ पर गोपीनाथ आचार्य के घर में जाते थे ईश्वरपुरी को नमस्कार करने के लिए। वो प्रणाम करते थे और निकल आते थे, कभी कभी थोड़ा बैठ भी सकते थे लेकिन फिर चले जाते थे। अपने छात्रों को जब वो पढ़ाना समाप्त हो जाता था दिन के लिए तो वहाँ पर आते थे। तो जब पहली बार ईश्वरपुरी ने निमाय पंडित को देखा तो उनको पता नहीं था कि ये कौन है, एक बड़े विद्वान लड़का है ये, बहुत इतना ही पता था, लेकिन ये स्वयं श्री कृष्ण नहीं पता था, स्वयं भगवान है ये नहीं पता था। परंतु निमाय पंडित आदि के सौंदर्य, उनके सौम्य स्वभाव आदि को देखकर बहुत उनको अच्छा लगा और उनको पता लगा कि ये बहुत बड़े विद्वान है। और जैसा हम जानते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं वो बहुत नम्र भी होते हैं, तो भले इनके अंदर इतने अच्छे बड़े बड़े गुण होते हैं फिर भी वो अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। तो ईश्वरपुरी ने निमाय पंडित से कहा कि अरे पंडित, तुम तो बहुत बड़े विद्वान हो, मैं तो विद्वान नहीं हूँ, फिर भी मैंने साहस किया है ऐसे ग्रंथ की रचना करने के लिए। ग्रंथ का नाम है श्री कृष्ण लीलामृत। तो मैं ये तुम्हें ग्रंथ दे रहा हूँ, कृपया तुम इसको पढ़ो और पढ़ के ये मुझे बताओ कि इसमें कोई गलतियां हुई है क्या, व्याकरण आदि के कोई गलती, अलंकार व्याकरण की गलतियां हो सकती है इसमें? तो उस समय निमाय पंडित ने उत्तर दिया, आप तो कृष्ण के भक्त हैं, आपकी रचना में क्या गलती हो सकती है, क्योंकि आपकी रचनाएं जो हैं वो कृष्ण प्रेम से भरी हुई हैं। और यदि कोई व्याकरण अलंकार आदि की गलतियां यहां वहां हो भी जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आपकी रचनाओं को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं, बड़े प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। फिर उन्होंने एक श्लोक बोला, कौन सा श्लोक बोला उन्होंने बताए? नहीं, वो भागवत का श्लोक है, वो भी अब श्लोक का बोल सकते हैं, लेकिन महाप्रभु ने नहीं बोला वो श्लोक। कौन सा श्लोक बोला महाप्रभु ने? भावग्राही जनार्दन वाला श्लोक, कौन सा श्लोक है वो? मूर्खो वदति, फिर
पंडिता
वदति वैष्णवे, वैष्णवे वैष्णवे, फिर अभयम ने उभयो तत् समं पुण्यम भावग्राही जनार्दन। इस श्लोक का मतलब ऐसा है, उन्होंने एक एक श्लोक है ये, मूर्खो वदति विष्णाय। जैसे अभी कृष्ण शब्द है तो हम कृष्ण को नमन करते हैं, हम क्या कहते हैं? श्री कृष्णाय नमः, है ना? तो उसी तरह से जिसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है वो जब विष्णु की आराधना करता है वो कृष्णाय नमः कहते हैं, इसलिए वो विष्णाय नमः कहेगा, परंतु विष्णाय नमः नहीं है वो, विष्णवे नमः, क्योंकि कृष्ण और विष्णु जो अंतिम अक्षर है वो अलग है, एक में उ है और दूसरे में अ है। तो इसलिए जब नमन करते हैं तो कृष्णाय कहते हैं और विष्णवे कहते हैं, विष्णाय नहीं कहते हैं। तो मूर्खो वदति विष्णाय, जो अल्पज्ञ है वो भगवान विष्णु की पूजा करते समय क्या कहता है? विष्णाय नमः। और धीरह जो बड़ा ज्ञानी है इत्यादि, धीरो वदति विष्णवे, जो बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति कहेगा विष्णवे नमः। परंतु उभयोर तत् दोनों के समम पुण्यम, दोनों को समान लाभ होता है, क्यों? क्योंकि भावग्राही जनार्दन, कि जनार्दन श्री कृष्ण वो भाव को ग्रहण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की विशेषता क्या है कि वो हमारे भक्ति को स्वीकार करते हैं, इसलिए ये हमको याद रखना चाहिए, भावग्राही जनार्दन। वो व्याकरण ग्राही जनार्दन नहीं है, उच्चारण ग्राही जनार्दन नहीं है, धन ग्राही जनार्दन नहीं है, बुद्धि ग्रहण ग्राही जनार्दन नहीं है, सौंदर्य ग्राही जनार्दन नहीं है, बल ग्राही जनार्दन नहीं है, भाव ग्राही जनार्दन है। भगवान को प्रसन्न करना है तो केवल भक्ति ही एक उपाय है। हमारे बल से, हमारे धन से, हमारे योग्यता से, हमारी बुद्धि से, हमारे सौंदर्य से भगवान को प्रसन्न हम नहीं कर सकते, केवल हमारे प्रेम से ही भगवान को संतुष्ट किया जा सकता है। तो निमाय पंडित कहने लगे कि आपके तो रचना में कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप शुद्ध कृष्ण प्रेम के स्तर में स्थित हैं। परंतु यदि किसी कृष्ण भक्त के रचना में ऐसी छोटी मोटी कोई गलती हो भी जाए, फिर भी भगवान उसको स्वीकार करते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि उसमें भक्ति भरी हुई है। तो जो आप जैसे महान वैष्णवों की रचनाओं में कोई भूल ढूंढता है, भूल आपके अंदर नहीं है, भूल उसके अंदर है जो गलती ढूंढ रहा है। इसी तरह से तो निमाय पंडित ने बहुत नम्रता से कहा कि मैं आपके रचना में कैसे गलती ढूंढ सकता हूँ। फिर भी बार बार ईश्वरपुरी ने आग्रह करने के कारण चैतन्य महाप्रभु ग्रंथ को ले गए और फिर अगले दिन पढ़ के उस ग्रंथ को वापस आए। और महाप्रभु फिर निमाय पंडित ने कहा ईश्वरपुरी से कि आपने जो इस श्लोक में क्रियापद का प्रयोग किया है, ये आत्मनेपदी नहीं होना चाहिए, परस्मैपदी होना चाहिए। क्रियापद के दो प्रकार होते हैं, वैसे अनेक प्रकार में से दो हैं, आत्मनेपदी और परस्मैपदी। आज क्या बात है, इतने लोग खांस रहे हैं, 4-5-6 लोग खांस रहे, सबका तबीयत ठीक है ना? ठीक है सबका तबीयत? आदिरस प्रभु, ब्रजेश कृष्ण, हरिराम प्रभु। तो आपने जो यहाँ आत्मनेपदी क्रियापद का प्रयोग किया है वो गलत है, यहाँ पे परस्मैपदी होना चाहिए। तो ईश्वरपुरी ने स्वीकार कर लिया, धन्यवाद। लेकिन थोड़े दिन बाद जब निमाय पंडित वहां गए, उन्होंने कहा पंडित जरा बैठो इधर, मुझे कुछ कहना है। तुमने जो कहा ना कि यहाँ पर आत्मनेपदी क्रियापद का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, परस्मैपदी क्रियापद का प्रयोग होना चाहिए था, मैंने बहुत गहराई से सोचा इसके बारे में, और सोचने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि यहाँ पर आत्मनेपदी क्रियापद ही होना चाहिए। और फिर उन्होंने कारण बताया। फिर निमाय पंडित ने सुना, समझा, कहा आप जो बोल रहे सही है। और पहली बार निमाय पंडित को किसी ने हराया, हराया मतलब उनको गलत साबित किया। नहीं तो आपको पता है निमाय पंडित इतने बड़े विद्वान थे, लोग भाग जाते थे, बड़े बड़े विद्वान भी उनको देख के ही डर के मारे रास्ता बदल के चले जाते थे, है ना? और सबको जाके वो चुनौती देते थे, चलो मेरे साथ बात करो। और इतने बुद्धिमान चैतन्य निमाय पंडित थे कि कोई उनका सामना नहीं कर सकता था। और ऐसे भयंकर पंडित थे कि वो किसी व्यक्ति को जाके, खास करके मुकुंद आदि को पकड़ते थे, मुकुंद मेरे साथ बात करो, भाई नहीं करना है बात, जबरदस्ती पकड़ के उनको बात करते, कोई तुम वाक्य बोलो, तुम्हारे पढ़ाई से क्या सीखा तुम, तो बेचारे कुछ बोल देते थे। फिर महाप्रभु उस वाक्य का खंडन करते थे कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। और फिर दूसरा व्यक्ति चुप रह जाता था, क्या बोलो। फिर जो निमाय पंडित ने बात कही थी अपनी बात का खंडन पुनः करते थे, और जो पहले उस व्यक्ति ने बात कही थी उसको पुनः स्थापित करते थे, और फिर दूसरे तरीके से उसी मूल बात को खंडन करते थे। इस तरह से कर करके सब लोग चकाचौंध रह जाते थे, इसकी बुद्धि क्या है, ये कौन है, इतना बुद्धिमान, इतना ज्ञान का भंडार। तो ऐसे ये केवल 15-16 वर्ष की आयु में, तो ऐसे व्यक्ति ने हार क्या है समझा ही नहीं था, लेकिन आज पहली बार वो हार गए। और वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि यहाँ हार के ईश्वरपुरी के सामने निमाय पंडित को बहुत आनंद का अनुभव हुआ, बहुत आनंदित हो गए हार के। साधारण से जब व्यक्ति हार जाता है ना तो बुरा लगता है, और जीत जाते हैं तो अच्छा लगता है। परंतु इस बार जब निमाय पंडित पहली बार हारे, और जब हारे तो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि ऐसे महान कृष्ण भक्त के सामने वो हार गए। तो ऐसे वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में वर्णन करते हैं। तो 7 महीनों के लिए रहे वहां पर, फिर वो चले गए ईश्वरपुरी भ्रमण करते करते अलग अलग स्थानों में, तीर्थ स्थानों में चले। फिर सब थोड़े समय बाद ऐसे हुआ कि निमाई पंडित के पिता जगन्नाथ मिश्र ने शरीर छोड़ दिया, त्याग दिया। तो फिर उनका श्राद्ध वगैरह करना था, तो श्राद्ध करने के लिए निमाई पंडित गया चले गए। जैसे हिंदू समाज में प्रथा है ना, श्राद्ध आदि करने के लिए वहाँ पर जाते हैं गया में। तो वहाँ पर गए, वहाँ पर पिंड आदि सब किया, पिंड तर्पण आदि करते हैं ना श्राद्ध के समय। फिर अचानक उन्होंने वहाँ पे ईश्वरपुरी का दर्शन किया। तो ईश्वरपुरी को देख के बहुत प्रसन्न हो गए और दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया और आनंद के आंसू से एक दूसरे के शरीर को भिगोया। और निमाय पंडित ने कहा कि हे पुरीपाद, आपका दर्शन करके आज मेरी गया यात्रा सफल हो गई, मेरे पिंड तर्पण आदि सब पूर्ण हो गए। जब हम पिंड दान करते हैं तो किसी एक हमारे कोई पूर्वज हैं वो उनका उद्धार हो जाता है, परंतु आपका दर्शन करने मात्र से मेरे अनंत कोटि जो पूर्वज हैं उनका उद्धार हो चुका है, केवल आपका एक बार दर्शन करने से। इसलिए आज मेरा जीवन सफल हो गया है और आज मेरे सारे पूर्वजों का जीवन भी सफल हो गया है। तो ऐसे भूरी भूरी प्रशंसा निमाय पंडित ने ईश्वरपुरी की और उस समय उन्होंने ईश्वरपुरी से निवेदन किया कि आप कृपया मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो ईश्वरपुरी ने कहा, मैं कौन होता हूँ भाई दीक्षा तुम्हें देने वाला, लेकिन तुम्हारी इच्छा है ना, तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं ये करूँगा। तो उन्होंने दी और उसके बाद एक ऐसा परिवर्तन हुआ ईश्वर निमाय पंडित के अंदर, सभी लोग देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पहले निमाय पंडित भक्तों का मजाक उड़ाते थे, भक्तों के साथ में न्याय अलंकार आदि के बारे में कोई वाद विवाद करते थे, तर्क करते थे। परंतु इस बार जब वो गया से लौट के आए, अहो चमत्कार, क्या देखते हैं कि निमाय पंडित कृष्ण नाम का संकीर्तन करके हुए आ रहे हैं और पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में मग्न है। कृष्ण के अलावा कोई बोल ही नहीं रहे हैं, एक भी शब्द कृष्ण के अलावा उनके मुख से नहीं निकल रहे हैं। ऐसे देखकर सारे वैष्णव तो बहुत प्रसन्न हुए, परंतु बाकी जो नवद्वीप के निवासी थे वो सोच लेंगे, ये क्या पागल हो गया लड़का, क्या हो गया इसको, इतना बुद्धिमान था, अच्छा ब्राह्मण था, अभी ये कृष्ण कृष्ण कह के घूम रहा है, क्या हो गया। कई लोग सोच लेंगे पागल है, वात का विकार है, दवाई लेके आए वात का शमन करने के लिए। जब श्रीवास पंडित को बुलाया माता शची ने कि मेरे बेटे को क्या हो गया, देखो सब लोग बोल रहे हैं पागलपन का दौरा आ गया, वात सर चढ़ गया सर में, तो श्रीवास पंडित जो शुद्ध भक्त हैं वो तो समझ पाए कि अरे ऐसा पागलपन मुझे भी चाहिए। कोई चिंता नहीं करो। तो ये परिवर्तन हुआ ईश्वरपुरी का दर्शन करने के बाद गया में। अभी निमाय पंडित ने अपने भक्ति का आंदोलन प्रारंभ किया। कोई निमित्त चाहिए था तो उतने गुरु शुद्ध भक्त ईश्वरपुरी को उन्होंने निमित्त बनाया इसके लिए। ईश्वरपुरी में आगे चल के अपने दो शिष्यों को बताया बाद में कि तुम जाके निमाय पंडित की सेवा करो, काशीश्वर और गोविंद। इसलिए गोविंद उनके निजी सेवक बन गए। काशीश्वर पहले भक्त थे जो कि वृंदावन में पहुंचे, वक्रेश्वर थे और काशीश्वर पंडित पहले थे, और लोकनाथ गोस्वामी भूगर्भ गोस्वामी भी गए थे वहां। तो खैर इस तरह से आज ईश्वरपुरी पाद का तिरुभाव दिवस है। तो जिस प्रकार से उन्हें माधवेंद्रपुरी का आशीर्वाद मिला कि वो कृष्ण प्रेम के सागर बन जाएं, उसी तरह से हम भी ईश्वरपुरी पाद के चरण कमलों में प्रार्थना कर सकते हैं कि समुद्र तो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, परंतु कृष्ण प्रेम के समुद्र का एक बूंद भी हमारे ऊपर आए, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो ऐसे ईश्वर पुरी पाद के चरण कमलों में हमें आज प्रार्थना करनी चाहिए। श्रीला ईश्वर पुरी पाद की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्रीला प्रभु पाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा हरि बोल। जीवन चरित्र सुनने से बड़ा आनंद आता है ना, है कि नहीं? भौतिक जगत में कितने जीवनियां लिखी हैं लोगों के बारे में, ये राजा है, इसने ऐसे किया, कोई राजनेता है, कोई बड़ा खिलाड़ी है, सबके बारे में लोग किताब कर बड़े बड़े ग्रंथ लिखते हैं। क्या फायदा है इनको पढ़ के? चर्चा करनी है तो ऐसे महान वैष्णवों की करनी चाहिए, तब जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो फूलों के बारे में याद है ना सबको? हाँ।